जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी हरे गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, हे गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, हरे गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी धारी जया राधा माधव कुंज बिहारी, जया राधा हरी जया राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना नाना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, यमुना जया राधा माधव कुंज बिहारी, जया राधा माधव हरे जया राधा माधव कुंज बिहारी, जया हरि गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी नारी जया राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Nitai Gaurango 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 Gaur Hari Nitai Gaurango Hari Gaura 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 Hari Gaura Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Hari Patita Pavana Gaura Hari Patita Pavana Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Jaya Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Sri Radhe Chandra Radha Radhe Jaya Radha Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Sri Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jai Baladeva Mata Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Guru Dev Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora
Jam Shripal Paramahansa Parivrata Acharya Stotra Shata Srimat Divan Grace of Charanaravinda Bhakti Vedanta Swamarata Paji Ananta Koti Vaishnava Vrindiki Jai Namacharya Srila Vyasasara Jai Vrimsa Gaujai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Dvaita Gadadhar Srivatal Govaktam Ki Jai Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giryodhan Ki Jai Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Ki Jai Sri Sri Radha Kunjahaj Ki Jai Sri Sri Radha Madhav Ki Jai Sri Sri Jagannath Swaraj Baldev Jai Nitai Gurhar Ki Jai Jadu Drishila Prapal Ki Jai All Glushta Sambhadesh All Glushta Sambhadesh All Glushta Sambhadesh All Glushta Guru and Gauranga All Glushta Sambhadesh
Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुष्कंद, कौन सा विषय के बारे में चर्चा होता चतुष्कंद में? चौथा विषय के बारे में है, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण। और 22 कौन सा 29वां अध्याय का श्लोक संख्या 2b के बारे में, 2b के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अदृष्टम दृष्टवन नंक्षेद भूतम स्वप्नवत अन्यथा भूतम भवत भविष्यच्च सुप्तम सर्व रहो रहः। अदृष्टं दृष्टवन् चेत् भूतं स्वप्नवदन्यथा भूतं भविद्वैश्च सुप्तं सर्वरहोरः। अदृष्टं दृष्टवन् चेत् भूतं स्वप्नवदन्यथा भूतं भवद्भविष्यच्च सुप्तं सर्वरहोरा। अदृष्टं दृष्टवन्नच्छेत् भूतं स्वप्नवदन्यथा भूतं भवद्भविष्यच्च सुप्तं सर्वरहोरा। अदृष्टं दृष्टवन्नं चेत् सर्वरहोरः। अदृष्टं दृष्टवन्नं चेत् भूतं स्वप्नवदन्यथा भूतम सर माताजी अदृष्टम दृष्टवन्नं चेत् भूतम स्वप्नवदन्यथा भूतम भविद्भविष्यच्च सुप्तम सर्वरहोरा। अदृष्टम भावी सुख, दृष्टवत प्रत्यक्ष अनुभव की तरह, नंक्षेत परास्त हो जाता है, भूतम भौतिक संसार, स्वप्नवत स्वप्न की तरह, अन्यथा नहीं तो, भूतम गता भूतकाल में घटित, भवत वर्तमान, भविष्यत भविष्य, च भी सुप्तम स्वप्न सर्व सर्वों का, रहा रहा रहस्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वो मात्र स्वप्न है, समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। तात्पर्य वास्तव में सारा संसार मात्र स्वप्न है, अतः भूत वर्तमान या भविष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग कर्मकांड विचार वाले हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत हैं, ये भी स्वप्न देखते हैं। इसी तरह गत सुख का तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। वास्तविकता तो कृष्ण तथा कृष्ण सेवा है, जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है। जैसे कि भगवान ने भगवद्गीता सातवां अध्याय का 14 श्लोक में कहा गया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं वे मेरी माया को पार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा प्राचीन भरी का मध्य वार्तालाप नामक 29वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखानुतं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करीकंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्वदं शिव विरञ्चुनुतां शरण्यं हृत्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। नीलाचलनिवासाय नित्याया परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विवासादि घोर भक्तवृन्द वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। We are very fortunate to have with us His Holiness Ram Govind Swami Maharaj with us. You all have seen him before. I'll give a brief introduction about him. He was born in 1942 in Andhra and he was a brahmachari from beginning. He never got married. In 1963, he joined the Indian Army and served for about 25 years. 1963 to 1988. And then Maharaj, I think he became an ex-serviceman. Isn't it, Maharaj? After that, he was. They call it permanent commission. Which means you have to preach in army also, I think. You may get many sannyasis. Huh? After their service in army is over. And then he academically is a BA and did his communication engineering while serving the army. 1984, he was sent on deputation by Indian Army to Botswana Defense Force to train the Botswana Defense Force technicians. And after his retirement in April 1988, he was offered a job by the Botswana government, and he continued his new assignment in July 1988. And in 1970 and 71, he used to see the Western devotees of Hare Krishna performing Sankirtan in Calcutta. Just see how the Harinam can be powerful. See, in 70, 71, Maharaj has been watching Sankirtan going on in Calcutta streets. So in 1985, when he was in Botswana, he used to attend the lecture and bhajan program at Botswana Hindu Society Temple. It's called Gaborone, you call it, Maharaj? Gaborone. He first came in direct contact with the Hare Krishna devotees in 1986 in Washington. So he used to be active member of Botswana Hindu Society. He used to attend their programs regularly and participate in recitation of Sri Ramayan. Maharaj actually knows Ramcharitmanas very deeply. He can recite hundreds of verses continuously. So he was a very active member there. In Botswana, he happened to attend lectures of Bhagavad Gita by His Holiness Krishnadas Swami Maharaj in 1990. Finally, he took shelter of His Holiness Krishnadas Swami Maharaj in 1996. And he has been a temple president of the ISKCON Botswana temple from 1998 to 2007. And 2008, he did his Bhakti Shastri from BIHE. And 2010, he did MIHE Bhakti Vaibhava course. So, while doing these courses, he also was awarded sannyas by His Holiness Lokanath Swami Maharaj on the auspicious day of Ram Navami on April 2009 in Mayapur Chandrodaya Temple. So Maharaj preaches in Botswana, in South Africa, in Kenya, and also different parts of India. And Maharaj knows Telugu, so he also preaches in Andhra Pradesh, Telangana also. So I have seen Maharaj here in Pune when he comes to the yearly Bhagavad Katha program of His Holiness Lokanath Maharaj regularly. And Maharaj's, His Holiness Ram Govind Maharaj's humility and his simplicity and his friendliness and his and dedication to Srila Prabhupada's mission. And although he was in army for 25 years, he came to the right conclusion of taking shelter of Krishna's lotus feet subsequently. So he said the army discipline actually gave him very good training for him to take devotion service more seriously. So Maharaj travels around preaching, and it's a blessing of our Pune devotees that Maharaj visits here from Ram Govind Maharaj. I was recently calling him to come to Adilabad also, where he can give lectures in Telugu. So he's very learned personality. At the same time, presents it in a fashion we can understand very well. We have the Vrinda camp, many devotees have come from different temples also. So we are very fortunate to have Maharaj. Let us welcome him to Radha Vrindavan Chandra Temple. Hari Bol!
Hari
Bol! Parambuj Ram Govind Maharaj ki?
Bahut secret mil gaya Prabhuji. Itna kaha se mil gaya, itna secret. Bahut elaborate mil gaya. Hare Krishna. Prabhuji bahut glorify kiya, itna nahi, main itna nahi hu. पूना टेम्पल तो ज्ञान का भंडार है. अब माने न माने पूरा इस्कॉन वर्ल्ड जानते हैं. भक्तों का संगत मगर कुछ सीखने का अवसर मिलता है. अपना तो अपना बुद्धि कुछ काम नहीं करेगा. यम प्रवजंतम अगम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया यच्चु नीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. आज के ये प्रसंग 24-25 अध्याय से लेकर 29 अध्याय तक पुरंजन उपाख्यान चल रहा. जो मनुष्य केवल कर्मकांड में रहकर जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जगन्नाथ स्वरूप देख जाए, दाय गुर की जय, प्रपाल की जय. जो मनुष्य भौतिक जगत में केवल भौतिक इंद्रिय सुख के लालच में रहते हैं, उनका गति क्या होता है? अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमारा कई पुराण भी कर्मकांड को प्रोत्साहन करते हैं। नारद महर्षि भी व्यास महर्षि बोलते हैं आप इतना पुराण भी लिखे हैं और कर्मकांड पर जोर दिया है, और कर्मकांड करते रहोगे उसके संतुष्टि कहाँ होगा? एक कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, आशा कभी समाप्त नहीं होता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आशा समाप्त नहीं होता, एक आशा पूरा करोगे दूसरा आशा तैयार रहेगा। एक आशा पूरा करने का अर्थ है कि अग्नि में पानी डालने से बुझ जाता है और घी डालने से बढ़ेगा। आशाओं को पूरा करने का अर्थ है कि आप अग्नि में घी डालने का सामान, कभी आशा पूरा नहीं होती। जब तक हम जीवित है आशा तो रहेगा ही है। इसलिए नारद महर्षि बताते हैं कि आप तो ऐसे कर्मकांड पुराण लिखे हैं और उसमें ज्यादा कर्मकांड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, इससे जो भौतिक मनुष्य जो है कर्मकांड के ऊपर आप लिखा है अधिकृत समझकर जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और उसमें शांति नहीं मिलेगा और आपको भी शांति नहीं मिल रहा। भगवान के बारे में तत्व चिंतन अवश्य किया है, लेकिन तत्व चिंतन से कहीं भी शांति नहीं होगा। तत्व चिंतन भी चाहे लेकिन भगवान का साक्षात रूप का दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए चाहे, केवल निराकार स्वरूप का चिंतन करने से शांति कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नारद महर्षि का आशीर्वाद से व्यास महर्षि भगवान के लीलामयी कथाओं को भागवत में, भागवत में कोई भी अध्याय है कोई भी कभी भी कर्मकांड को प्रेरणा नहीं देता है, क्योंकि भागवत का उद्देश्य है, भागवत किन के लिए है? पर निर्मच्छणा नाम सतम, ये भक्त जो वैषम्य अवस्था से दूर है, जो देश भाव से मुक्त होता है परमहंसों के लिए, जो व्यक्ति भौतिक जगत से भगवत धाम जाने का इच्छुक है उनके लिए भागवतम है। भौतिक जगत में रहकर और भी आनंद भोगना ये उनके लिए भागवतम का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो अन्य बहुत सारे पुराण है। लेकिन जिसको भगवत धाम जाना जन्म मृत्यु से परे होकर ये इसमें जो कठिनाई है इस मृत्यु से परे होकर भगवत धाम जाकर निरंतर भगवान के सेवा में रहने के लिए जो इच्छा कर रहे हैं उनके लिए भागवतम है। इसलिए पद्म पुराण में भागवत महात्म्य बोला कि अभक्ता नाम ना सुनो, अर्थात जिसको जो भक्त नहीं है उनके लिए भागवत सुनाना भी अपराध है। क्योंकि भागवत अभक्त सुनेंगे वो उसको भी कर्मकांड समझेगा। अब देखना भारत में बहुत हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में शादी हो रहा है इसलिए हम भागवत कथा कराते हैं, अच्छी बात है। भागवत कथा इसलिए कराते हैं कि ताकि भगवान का आशीर्वाद हमें मिले, इस भाव से होना चाहिए। लेकिन भागवत कथा कराते हैं कि ताकि शुभ फल मिलेगा, हमारे पुण्य फल मिले। भागवत कथा श्रवण भागवत वचन जो है पुण्य कर्म के लिए नहीं है, भक्ति पुण्य से संबंध नहीं है, पुण्य से परे है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, कई जन्मों का संचित पुण्य कर्म का भाग्य है कि उसका फल है कि भक्तों का सांगत्य मिल जाता है। अर्थात जब कई जन्म हम पुण्य कर्म करते करते आए हैं और समस्त पुण्य कर्मों का फल है कि किसी भक्त का सांगत्य मिलता है, और जब भक्तों का सांगत्य मिला तब जाकर जो है भगवान का भक्ति में प्रवेश हो जाता है। भक्तों का सांगत के बिना आप अमर से हरेक हम लोग अपने आप को पूछे हम अपना भक्त बने किसी भक्त का कृपा से उनका सांगत से हम भक्ति मार्ग स्वीकार किए, आप पूछ लो अपना कोई अपना बने बने क्या? मैं तो नहीं बना, संभव नहीं है। भक्तों का सांगत भी सुलभ नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलहिना संता सतसंगति संस्कृति करांता, सत्संगति क्यों कह चाहिए? सत्संग के बिना आप भगवान का कथा लीलामय कथाओं को आप सुन नहीं सकते, ना समझेगा नहीं है। अभक्त है जो भगवान का लीलामय कथाओं को सुनाते सुनाते बीच में अपना भी मसाला डालेगा, अपना विचारधारा करेगा, फिर वहीं पर गड़बड़ होगा। कितने भी सब्जी व्यंजन बहुत बढ़िया बनाया जाए थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया तो खराब हो गया, होता है कि नहीं? इसी प्रकार जो है कर्मकांडियों से जो अभक्त है, कथा भी करते हैं, मायावाजी भी करते हैं बहुत सारे, उनसे सुनेंगे, उनका विचारधारा प्रकट करेंगे, बस हमारा बुद्धि भी भ्रम में आ जाएगा। इसलिए भागवत का जो सुनने का अधिकार है केवल भक्तों के लिए, इसलिए पद्म पुराण में लिखा है कि अभक्तों के लिए ना अधिकार नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे भाव श्रवण भाव कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी तैयार रहे, उसी समय इंद्र समस्त देवताओं के साथ जो है अमृत कलश लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सुना होगा कथा, सुने कि नहीं? और वहां पर आकर सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी बोलते, भाई क्या देवता किस लिए आ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो बड़ा नम्रता से, तुम लोग स्वार्थी हो बहुत, स्वार्थ के बिना कभी किसी महर्षि के पास जाते नहीं है। दजीज महर्षि बेचारा साधु है, आप प्रणाम किया है, आप वो साधु है तुरंत संतुष्ट हो गया, क्या चाहिए मांगो, अभी तुम क्या मांगा था, रीढ़ का हड्डी मांगा था, वो भी जिंदा, मरने के बाद रीढ़ का हड्डी मांगने से अलग बात है, तुम जिंदा होते हुए तुम्हारा रीढ़ का हड्डी लेना, एक कोई मांगे, तुम लोग बड़ा स्वार्थी। उनका दजी महर्षि का उदाहरण देकर बोलते हैं, बड़ा स्वार्थी है, किस लिए आए बोलो। इंद्र बोलते हैं कि हम सुना है कि सातवां दिन जो है सर्प के दर्शन से परीक्षित का देहांत हो जाएगा, मृत्यु होगा, इसलिए हम अमृत लेकर आए, अमृत पियो, उसका बाद ये कि नहीं जाए श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाए, देवनाथ सुबोध बोल दी गौनित आय की जाए, अमृत पिलाओ, उसके बाद कितनी दफा दर्शन दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल सुखदेव गोस्वामी हंसकर बोलते हैं कि तुम लोग इतना उदार नहीं है, तुम लोग महास्वार्थी है, इसका बदले में तुम लोग क्या चाहते हो, इसका बदले में हम चाहते हैं भावत कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़ा क्रोध आता है, हंसकर बोलते हैं कि अरे कहां कांच का टुकड़ा, कहां का मणि, तुम्हारा अमृत जो है कांच का टुकड़ा है, हमारा भागवत जो है मणि है, क्वा क्वाचा क्वा मणि, कहां का तुलना कर रहे हो तुम, यदि भागवत श्रवण की इच्छा से आया होता मैं आपको अनुमति प्रदान किया करता, लेकिन तुम तो एक व्यापारी जैसा, यहां से सुनने का अधिकार नहीं है, ये तब बोलते हैं भक्त नाम से यहां से निकल जाओ। कहने का अर्थ है कि ये भागवत जो साधारण नहीं है, केवल भक्तों के लिए है, और ये बड़ा भाग्य है कि भक्तों की कृपा से हम लोगों को सभी को भागवत श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद हम लोगों के इसलिए इतना हम लोगों का कृपा प्रदान किया है कि रोजाना भागवत श्रवण केवल इस्कॉन में होता और कहीं नहीं होता, बाकी जगह होता है लेकिन समय समय पर, रोजाना कहीं रेगुलर नहीं होता, केवल इस्कॉन में, क्योंकि हम जितना भी जप करें हो सकता हम इतना प्रवीण ना हो जिस ढंग से करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु का कृपा है कि हम सभी भगवत धाम जाना है, वो कैसा होगा भगवान का ध्यान नहीं करेंगे कैसा होगा, इसलिए प्रभुपाद अलग अलग विधान हमारे प्रदान किए हैं। सुबह हम जप करेंगे, भक्तों का सांगत्य में भगवान का दर्शन करेंगे, भागवत कथा भागवत सुनेंगे, बोलेंगे भी है, क्योंकि भागवत का श्लोक एक पढ़ो या आधा भी पढ़ो रोजाना, उनको तो लिबरेशन गारंटी है, मुक्ति गारंटी है। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य है, जहाँ चौथा पांचवा अध्याय में सनत कुमार बोलते हैं कि अरे एक श्लोक नहीं आधा श्लोक भी रोजाना पढ़ो, उनको तो मुक्ति मिलेगा ही। इसलिए जब भी हमारे संभव मिलता है, अवसर मिलता है, जरूर इसको श्लोक को बोलने का यत्न करना चाहिए, गलत भी होता तो कोई बात नहीं। और ये भागवत का उद्देश्य है कि ये न के न उपाय से भगवत भक्तों को मृत्यु संसार से पार करके भगवत धाम में नित्य भगवान के सेवा में रहने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्त जो है भगवान का सेवा भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवतात् भक्ति रहयति की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कभी बोला है कि वैकुंठ में जाना है? रसिक भक्त तो बोलते हैं कि भाई वैकुंठ में क्या जाना, हमें नहीं चाहिए, वैकुंठ और गोलोक वृंदा अपना स्थान पर सर्वोत्तम है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो रसिक भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, उनको भूलोक में भगवान के सेवा में जो आनंद मिलता है भाई उधर भी नहीं मिलेगा। अभी भूलोक में कभी जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी रामनवमी, राधाष्टमी, बलराम, फिर कोई ना कोई बहाना रहता भक्तों के लिए। अभी गोलोक वृंदावन में कभी भगवान का जन्म ही नहीं होता, जन्माष्टमी मनाओगे उधर? राधाष्टमी मनाएगा? इसलिए जो रसिक भक्त होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें इधर ही ठीक है, आप उधर ठीक, क्योंकि हम इधर रहे, आप तभी आपको उत्सव करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कहने का अर्थ है कि भूलोक में भगवान का कथा सुनना भी बहुत उत्तम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त इस जन्म में भक्ति मार्ग में रहकर नियमों का पालन करते हुए सेवा कर रहे हैं वो जीवन मुक्त है। कई दफा भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि जो सेवा मुक्ति के बाद भक्ति होता है, मुक्ति के बाद भक्ति हो जाता है, और जो सेवा मुक्ति के बाद भगवान का सेवा करना था वो सेवा जो भगवान का साक्षात वृंदावन चंद्र का सेवा इसी भौतिक शरीर में रहते हुए कर रहे हैं, इसलिए प्रपार कर लिखते हैं कि ये जीवन मुक्त है। और जब मुक्ति जीवन मुक्ति होकर इधर भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, हम मुक्ति भी हो गया, फिर उधर धाम में क्यों जाना है? जहां भगवान है वही धाम है। तो ये सब समझाने के लिए नारद महर्षि, देखा है कि प्राचीन भरी, जिसको भरीसाट भी कहा जाता है, बड़ा कर्मकांड में लिप्त था, उनको समझाने के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा जो कर्मकांडी होता है उनका मन ये भगवान का भक्ति में जल्दी नहीं लगता, हर एक कार्य का फल इच्छा चाहिए उनको। वो देखते हुए एक कथा का तौर पर बता, इसलिए पुराणों में कई दफा कथा सुनाते हैं। कथा का अर्थ ही है कि भगवान का, पहले हम कथा सुनते हैं भगवान के लीला, कथा सुनकर उसका तत्व भी चिंतन करना चाहिए ना। भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान कभी नहीं बोल के केवल मेरा गुणगान करो, कथा सुनो, बस हो गया, नहीं, कथा का पीछे तत्व है, तत्व से जानना चाहिए। और भक्त तत्व से जानना चाहते हैं, नहीं आप भक्त जो रहते कर्म कांड रहते, भगवान का कथा अच्छा है, इसलिए तुम ये कथा पढ़ोगे तुम्हारे ये लाभ मिलेगा, तुम ये कथा करोगे तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि लाभ मिलेगा, उनको वहां तक सुख है। नहीं, भक्ति को लिए पुत्र पौत्र आदि से कुछ लेना देना नहीं, भगवान चाहे तो पुत्र पौत्र देंगे, नहीं तो नहीं चाहे, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है। भक्त को चाहिए भगवान का कृपा चाहिए बस। इसलिए भागवत में कहीं भी ये प्रसंग नहीं आता है कि ये अध्याय पढ़ोगे आपको ये मिलेगा, लेकिन परंतु यहां तक आ जाते ये भागवतम के अध्ययन करने से आपको पराभक्ति मिल सकता। जैसे कि दशम स्कंद में रासलीला का अंतिम रासलीला के बाद जो है सुखदेव महर्षि बोलते हैं, विक्रीडितम व्रजवधु इदम च विष्णु श्रद्धानितो वन अथ भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामान हृद्रोग आश अपहनोत अति धीरा। अगर को अभी कर्मकांड भी बोलेंगे भाई, जो कथाकार भी बोलते हैं, ये पूरा भगवान के लीलामय कथाओं को सुनोगे, रासलीला सुनोगे, आपके घर में ये प्राप्ति हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कभी नहीं बोला ये प्राप्ति होगा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामान, भगवान का कथा लीला कथा सुनने से पराभक्ति मिलेगा हमें। और पराभक्ति मिलेगा कब है? हृदयोगाश, जब तक हमारे हृदय में, हृदय का रोग क्या है? भौतिक इच्छाओं को भोगने का जो है इंद्रिय सुख ही सबसे बड़ा रोग है, हृदय का रोग है। और उस हृदयोग को दमन करने के लिए बड़ा ये कथा जो है सहायक होगा, ये कथा सुनने से हृदयोग का दमन हो जाएगा, और हृदयोग का जब दमन हो जाएगा भगवान का प्रति श्रद्धा हो जाएगा, भक्ति पराभक्ति मिल जाएगा, नष्ट की भक्ति बोलते हैं। अस्तु, तो यहां पर इस अध्याय का अंत में यह पूरा पुरंजन को कथा का तौर सुना, एलेगोरिकली बोलते हैं ना, कथा का तौर सुना दिया। सुनाने के बाद 27 अध्याय के बाद 28 अध्याय में बोलते हैं कि आपको समझ में आया अभी तक जो बोला? पुरंजन बोलते भगवान हमारे कुछ समझ नहीं आया, जो अभक्त है उनको परोक्ष रूप से जब समझाएगा कैसे समझाएगा, परोक्ष रूप से बताते हैं इसलिए कि ताकि उनकी बुद्धि हो तो समझेगा, लेकिन जिनका बुद्धि केवल कर्मकांड में लगा है, इंद्र सुख में लगा हुआ है, उनको परोक्ष बुद्धि से समझो नहीं आएगा। तब जो है नारद महर्षि पुरंजन को बता देते हैं, पुरंजन क्या है, जीव है, और जीव का कब जाति भ्रम भ्रमित होकर चले जाते हैं। अज्ञात मित्र जो है, भगवान जो है हमारे परमात्मा स्वरूप में हमें हमारे को बताते हैं ये करो मत करो, दोनों तो हर एक बताते हैं, हर एक जीव को बता देते हैं कि आप मत करो, प्रेरणा देते परमात्मा स्वरूप। हम जो भी काम करने लगते हैं अंदर से एक प्रेरणा मिल जाता है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं। जब हम रजो तमो सतगुण में तमोगुण में रहते हैं हम सुनेंगे नहीं है। जैसे कि हम बस स्टैंड में हैं, कोई हमारा कुछ कॉल कर रहे हैं, रिंग बज रहा, बात करना भी चाहते हैं तो क्या हो जाता है, सुनाई नहीं देता, बात कर लेकिन सुनाई नहीं देता, क्योंकि इतना शोरगुल है, एम्बियंट नॉइज लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन बस स्टैंड से तो दूर आ जाएगा, एकदम चिल्लाने की जरूरत, आराम सुनाई देता। इसी प्रकार जब रजो तमो गुण में तमोगुण में रहते हैं, प्रेरणा दे रहा परमात्मा, परंतु हम सुन नहीं सकते, उनके ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी इच्छा इतना है कि पूरा हमारा हाउस ब्रेन में पूरा हाउसफुल रहता, पूरा इच्छाएं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। लेकिन भक्ति मार्ग में आएगा तो थोड़ा सत्वगुण प्रवृत्ति में रहते हैं, हाँ, और हम वो इच्छाएं कम हो जाता है तो हम सुनते हैं भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 13 अध्याय के 25 श्लोक में, शायद व्याख्या में, भक्त जो है हर एक काम भगवान की इच्छा से परमात्मा के निर्देशन में करते हैं, इसलिए उसका कार्यकल वो जिम्मेदार नहीं, यदि हम भक्त मार्ग में रहे तो। तो ये समझाने के लिए पूरा कथा बता देते हैं। पुरंजन जो 9 गेट वाले शहर में पहुंच गया, जीव तो ये शरीर ही 9 गेट वाला है ना, 9 द्वारे। इस प्रकार एक उपमा के तौर पर कथा सुनाकर समझाते, जैसे पूरा इस प्रकार बताते हैं कि पुरंजन को पता भी नहीं चला कब शत्रु आक्रमण कर दिया, आता नहीं कर चंडवी ज्वरा, हाँ चंडवी क्या समय है, समय का वेग कोई रोक सकता है, जरा आकर आक्रमण कर दिया, कोई भी अपना बर्थडे, कौन सा बर्थडे, शादी डे, कब डिग्री पास कर दिया, कब सब बोल देगा, नौकरी कब मिल गया, मृत्यु का डेट बोल सकते, कोई बोल सकता कब बूढ़ा हो गया, बोल सकते हो, कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता कौन सा डेट का वो बूढ़ा हो गया, कोई जरा हो बोलते ना, अकस्मात ही आ गए, कब आए पता नहीं है, अर्थ है कि वृद्धापा अवस्थाएं इंद्र सुख में इतना लुप्त हो गया था, उनको पता भी नहीं चला कि हमारा जो है बुढ़ापा आ गया, अभी इंद्र का इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें पता नहीं चल वृद्धापा आ गया। जैसे वृद्धापा आ जाते हैं इंद्र भी अपना ढीलापन आ जाता है। जब ये सब समझ लिया तब जो है प्राचीन भरि को समझ में आया, इसलिए पुराणों में कई दफा कथा के तौर पर सुनाकर समझाना चाहते हैं। भागवत में ऐसा कथा है कि केवल समस्त कथाओं का उद्देश्य भी उनको अपना स्वरूप को समझे। यहाँ सब सुनाने का पश्चात जो है यहाँ पर आज के श्लोक में बताते हैं, काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वो स्वप्न मात्र है। स्वप्न में क्या, स्वप्न में हम देखते हैं, कभी हम कोई शेर मेरे को भगा रहा, मैं दौड़ रहा हूं और पसीना भी आ जाता है, डर है, कभी आंख खुल जाए तो डर थोड़ी देर तक रहता है कि नहीं, अब देखे तो पसीना भी है, स्वप्न है लेकिन स्थित तो था, सपना यार कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन सपना अवश्य था, स्थित भी था उसे, तो तभी तो पसीना आया। इसी प्रकार भौतिक जगत, भूत वर्तमान भौतिक जगत में जो कुछ भी देखते हैं यह अस्थायी तौर पर है, इसलिए स्वप्न मात्र है। स्वप्न का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है, शाश्वत नहीं है, भौतिक जगत में कोई भी शाश्वत नहीं है, इसलिए वो सपना मात्र। इसलिए विजय ध्वज तीर्थ महाराज ने इनको लिखते हैं कि ये जो कुछ भौतिक जगत में वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य है, ये सभी ये स्वप्न मात्र है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य, पूरा वैदिक साहित्य जो भी है, समस्त शास्त्र है, यही बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत जो है स्वप्न मात्र है, इसका कोई स्थायी नहीं है, इसी में लिपटना नहीं चाहिए। इसी में पूरा संलग्न हो जाएगा तो फिर दूसरा ही लग्न मिलेगा हमें। इसलिए सब भौतिक जगत में सप है, मिथ्या होते भी उसको मिथ्या को भी भगवान का सेवा में अर्पण करना। मायावादी बोलते हैं कि सब मिथ्या है, इसको लगने से हम लोग को प्रतिफल को भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु हो जाएगा, इसलिए हम इससे लिपायमान नहीं हो जाएंगे, हम इससे अलग रहेंगे, संभव नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक आंख है तो देखेगा ही है, नहीं तुम नहीं देखो, संभव है? कितने देर तक आंख बंद करोगे? जब आंख बंद करोगे मन सोचने लगेगा, और मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कर सकते हो? संभव नहीं है, बहुत प्रबल है, कोई बिरला व्यक्ति सब कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक रूम कन्वर्जेशन में आते हैं, 26 वाली में ना पढ़े होंगे, उसमें एक दफा प्रभुपाद के डिसिपल्स पूछे हैं, प्रभुपाद वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल अवर माइंड बट अनेबल टू कंट्रोल इट। प्रभुपाद बोलता है, व्हेन डिड आई टेल यू टू कंट्रोल माइंड? मैं आपको कब बोला कि माइंड कंट्रोल करो? अभी वो सोच रही थी जब करने का अर्थ माइंड कंट्रोल करना चाहिए। सभी बोलते हैं ना, जो योगी अष्टांग योग वगैरह सिखाते हैं, प्राणायाम से माइंड कंट्रोल अवश्य होता है, लेकिन माइंड कंट्रोल करने का संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, आई टोल्ड यू टू चैंट अटेंटिव, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं उसको सुनने का यत्न करो बस उसमें। अब सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा, मन इधर है तभी सुनेंगे ना, मन कहीं बॉम्बे में घूम रहा हम थोड़ी सुनेंगे, नहीं होगा। तो अभ्यास धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा। इस प्रकार जो है दवाई होता है, बच्चों के लिए दवाई होता है, हम लोगों के लिए दवाई कुछ अलग होता है, जानते ना। बच्चों के लिए मेडिसिन में क्या है, दवाई सभी कड़वा रहता, मीठा तो होता ही नहीं है। अब बच्चे तो मुंह में कड़वा रहता अब थूक देंगे, लेकिन उनको कोई ना कोई उपाय करके उसको मुंह पेट में डालना है। इसलिए फार्मेसी वाले क्या करते, उसके ऊपर स्वीट कोटिंग करते हैं, और बच्चे के मुंह में गया स्वीट है बोलकर निगल लेगा, उसके बाद अंदर कड़वा हो गया, लेकिन हो गया क्या करेगा अभी। तो इसी प्रकार हम भी उसको धोखा देते हैं, माइंड को कहीं भी जाए निकल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे वो सुनने का आदत हो जाएगा, माइंड को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है समस्त वैदिक साहित्यों के ही रहस्य होते हैं, समस्त वेद शास्त्र कभी भी या कोई भी पुराण है, अंतिम लक्ष्य होता है कि भगवत प्राप्ति का। चाहे पुराण तमोगुण वालों के लिए भी है, रजोगुण वालों के लिए भी है, उनका अंतिम लक्ष्य देखना है, लेकिन साधारण तौर पर बीच का देख लेते हैं बस हो गया। लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है हरेक का, हरेक उद्देश्य एक ही, व्यास महर्षि का यही उद्देश्य है कि चाहे रजोगुण में है तमोगुण में है, धीरे 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 सतोगुण में आकर भगवान का भक्ति प्राप्त होना चाहिए। जब हम डिग्री भी पढ़ना चाहिए तो पहले हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, आई सीखना पड़ेगा ना। तो सब सीखने का उद्देश्य क्या, आगे हम जाकर उन्नत विद्या को प्राप्त करना चाहिए, अगर उसको नहीं करेंगे तो। इसलिए तो सब ये जो पुराण तमोगुण वालों के लिए भी है, उनका उद्देश्य यही है कि तमोगुण में करते करते तो रजोगुण में जाएगा, रजोगुण का कार्य करते हुए सत्वगुण में आ जाएगा। और जो भाग्यशाली होते हैं वो जल्द ही सत्वगुण में आ जाते हैं, भक्तों का संगत में आकर और जीवन सत्य क्या है समझ लेते हैं। वास्तव में सारा संसार मात्र स्वप्न है, अथा भूत वर्तमान तथा भविष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग कर्मकांड विचार वाले हैं, जिसका तात्पर्य की सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत है। सकाम कर्म भविष्य क्या है, हमारे इस जन्म में हमारे को जो कुछ मिल रहा है जो नहीं मिलना निर्धारित है। जब हम पैदा होते हैं, आजकल भी बहुत सारे ज्योतिष के पास जाते हैं कि नहीं, अभी बच्चा अभी पैदा हुआ, उसने बोलते तुम्हारा बच्चा 80 साल जिएगा, इतना पढ़ाएगा, इतना पैसा करेगा, 10 शादी हो जाए, इतना बच्चे होगा। अभी तो उसने बेचारा आंख ही को भी खोला नहीं है, अब उसका पूरा कैसा लिख रहे हैं। यदि वो जो लिखने वाला अच्छा विचार का है, बेमान नहीं है। आजकल तो सब पैसा के ऊपर से, पैसा दे दो ज्योतिष शास्त्र भी बदल जाएगा, कुंडली भी बदल देते हैं। देखते हैं ना शादी का मुहूर्त में, बोलते हैं भाई ये तो ये मुहूर्त नहीं जल रहा, अच्छा नाम बदली करते चलेगा। देखा होगा कि नहीं, जो शादी किया उनको मालूम है, ब्रह्मचारी को मालूम नहीं। वो अभी एक और एक शादी में एक है, तो शास्त्रों में लिखा है लेकिन कैसा रहता है कर्मकांड का, ये क्या बोलते हैं मंगल वाला है, ये लड़की मंगल का है। अभी ये लड़की से शादी होना है तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, पहले थे कदली वृक्ष का शादी करते, एक विधान है मांगलिक जो होते हैं लड़की, अब लड़की शादी करना तो पहले ऐसा करो उस लड़की का जो शादी है को केले का दरख्त रखेंगे उसके साथ शादी करो, उसके बाद दूल्हा का तो, क्योंकि वो बोलते हैं कि वित्त धारणा है, अगर उससे शादी होगी तो पति मर जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए पहले केला का पौधा पेड़ से शादी करो, केला का पौधा पेड़ मर जाएगा। करते हैं प्राचीन, आप जो ज्योतिष बनाते पूरी होते हैं कुछ लगा कुंभ, उसको कुंभ बोलते हैं उसको। कहने का अर्थ है कि ज्योतिष में अभी ये भी सच कहां बोलेगा, नाम बदली कर दे आपका, भाई नाम तो बदली कर दिया लेकिन आपके जन्म तिथि तो वो बदलेना है ना। हाँ जन्म तिथि भी बदलोगे तो तब तो अलग बात है, वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। कर्मकांड का ये सभी हमारे जीवन में जो कुछ मिल रहा है इस समय, जो नहीं मिलेगा हमारे पिछले जन्म के किया हुआ कर्म कांड साथ मिलेगा। उस कर्म कांड का फल को नष्ट करना है, कर्माणि निर्धत किंचित भक्तिभाजम गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजन, समस्त कर्म फलों सकाम कर्म हो दुष्कर्म हो सुकर्म हो, जो भी कर्म फलों का लेना देना समाप्त होने के बाद भी हम भगवत गांव में जा सकते हैं, भगवान का सन्निकट हो सकते हैं, और समस्त फलों का नष्ट होना है तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होना है, लेकिन एक ही स्ट्रोक में भगवान का शरणागत होकर भक्ति करेंगे समस्त कर्म फल नष्ट हो जाएगा। भगवान का शरणागत होकर जैसा प्रपात बोलते हैं कि केवल भगवान का राधा कृष्ण का प्रीति के लिए सेवा करना, बस जो संकल्प लेते हैं कर्मकांड क्या बोलते हैं, अंत में क्या विनियोग मंत्र में अंत में क्या बोलते हैं, पुत्र पौत्राज लाभार्थम विनियोग बोलते हैं, नहीं संकल्प कभी नहीं लिया आप, आप जब संकल्प करते पुरानी हाथ में पानी देते हैं ना, हम भी यज्ञ कर लेते हैं ना इधर, और उससे गोविंदा गोविंदा अपना गोत्र का नाम सब लेकर अंत में कर्मकांड बोलते पुत्र पौत्र लाभार्थम विनियोग फिर नीचे डालते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं इस्कोन में जो भी यज्ञ कराएंगे श्री कृष्ण प्रीति राधा कृष्ण प्रीत्यर्थम करोमी बोलकर डालते हैं हम लोग। तो प्रपात बोलते हमारा कार्य जो भी कार्य है, यहां तक हम प्रसाद भी लेते हैं राधा वृंदावन चंद्र के प्रीति के लिए, प्रसाद में ये बहुत आनंद आ रहा, मैं बहुत मजा ले रहा हूं, तो प्रपात बोलते कि ये तो ये भौतिक बन जाएगा, ये समय प्रसाद तो अवश्य है लेकिन उसको हमारा विचारधारा बदल गया, आनंद भोग रहा हूं, आनंद हम भोगते नहीं है केवल कृष्ण भोगता है, क्योंकि ये प्रसाद स्वादिष्ट इसलिए कि भगवान का मुख से स्पर्श हुआ है, लावा स्पर्श हुआ है, इसलिए इस कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ले रहा हूं, ये वो भाव होता है तो वो शुद्ध वो पवित्र है, लेकिन यदि बहुत आनंद रहा बहुत इंद्र सुख भावना ले वो भी फल हमारे दूसरों ने ले, प्रसाद वार्निंग देते हैं। हम क्या बोलते हैं प्रसाद महाप्रसाद गोविंद की हेडिंग क्या है, प्रसाद सेवन में है ना, प्रसाद भोग नहीं लगा प्रसाद सेवन में हम सेवा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ हर एक कार्य जो है हमारा भक्ति में केवल राधा कृष्ण का प्रीति अर्थ होना चाहिए, हमारे प्रीति के लिए नहीं, हम जब भी कर रहे हैं राधा कृष्ण के प्रीति के लिए, क्योंकि भगवान हम जब ऐसा करें राधा कृष्ण प्रीत हो जाएगा उनको कृपा से हम जो है भगवत का सन्निकट हो जाएंगे, जब भगवान को कृपा प्राप्त हो जाएगा रजो तमो सतगुण सब गुणों से परे हो जाएंगे। तो इसलिए बता दें कि भगवान का इस माया जगत जो स्वप्न दृश्य है, स्वप्न मात्र जैसा है, उससे मुक्त होना है। इस स्वप्न जगत में रहेंगे, जब तक रहेंगे भगवान से अलग रहकर रहेंगे, कोई भी इस माया का बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। अब संभव है, चाहे लाखों यत्न करो। एक ही है कि जब भगवान का पार्टी में जमा कर, देखते हैं ना भौतिक जगत में, कोई पुलिस पकड़ लिया तो उनका चाचा या कोई होगा पार्टी का, गवर्नमेंट पार्टी का, बोलेगा तुम्हारे कितने मत हमारा बेटा पकड़ाया। अर्थ है कि मैं जितना पावरफुल हूँ, MLA MP हूँ, मेरा बेटा भी इतना पावरफुल है। इसलिए भगवान भी, हम भगवान का पार्टी में ज्वाइन होना चाहिए। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक दफा लेक्चर दे रहे थे इधर, या कहीं बोला था, आम आत्मा पार्टी, आम आदमी कहना आम आत्मा पार्टी में, कहने का अर्थ है कि हम भगवान का पार्टी में जमा कर ज्वाइन हो जाने का अर्थ है कि हम भगवान का भक्त बने। भगवान बोलते माँ में वे प्रपज्जन्ते माया में तम करन्ते, भगवान का शरणागत होकर हम भक्ति करेंगे, केवल भगवान के पीछे हम सब काम करते रहेंगे, तब माया पर दूर हो जाए। माया कोई हमारा दुश्मन नहीं है, माया भगवान का शुद्ध भक्त है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भगवान दुर्गा के बारे में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन छाये भी असत। हम लोग भगवान के छाये जैसे घूमते हैं क्या, इच्छा अनुरूपम अपि असत। जो भगवान का इच्छा का पुण्य प्रकट करने से पहले भगवान मेरा स्वामी क्या करना चाहते हैं, उस प्रकार करती है काम। जो गुरु के इच्छा की, गुरु का क्या इच्छा है, उनका अनुसार चलते हैं बताने से पहले, क्योंकि गुरु का सेवा करने लगेगा आपको मालूम, पता चल जाएगा गुरु क्या चाहते हैं। वो शुद्ध उत्तम भक्त है, फर्स्ट क्लास। पिताजी का क्या इच्छा है उसके अनुसार चलेंगे तो फर्स्ट क्लास पुत्र है, जैसा श्री राम थे। और गुरु बोलने के बाद करते हैं वो सेकंड क्लास का है, और गुरु बोलने के बाद भी नहीं करते हैं वो, अब सब तो दुर्गा भी माया भी भगवान का शुद्ध भक्त है। वो देखते हैं कि ये भक्त जो है हमारे भगवान स्वामी के पास जाना चाहते हैं, सचमुच जाना चाहते हैं, प्रलोभन देते हैं। अब प्रलोभन दे दिया, प्रलोभन में कुछ रह गया बस हो गया, जैसे एक छोटा बालक है रोता है माँ माँ बोल के, बहुत रोता है। अब माँ तो बहुत काम में बिजी है, अब बच्चा बहुत रो रहा, आकर जो बच्चों को समझाने के लिए कोई मिठाई देगा, कोई खिलौना देगा, अगर मिठाई देकर सुगो खुश हो गया फिर माता बोलता है ठीक, मेरे से मतलब नहीं, इसको मिठाई से मतलब था, खिलौना दे दे, खिलौना चुप हो गया मतलब है, खिलौने से मतलब है। लेकिन खिलौनों को भी फेंक दिया, मिठाई की भी फेंक दिया, वो एकदम हट करके माँ माँ बोल के रोते रहेगा, तब माँ सब काम छोड़कर जो है बच्चों को अपना गोद में लेकर चले गए, होता है कि नहीं। इस प्रकार जो हम भी माया तो बहुत प्रलोभन देंगे हम, और प्रलोभनों से मुक्त होकर, हमें कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, हम केवल राधा कृष्ण के चरण का चाहिए, उस निष्ठा में रहेंगे, तब जो है भगवान वो माया ही बोले ये तो मेरा प्रलोभन में नहीं आ रहा है, उसको मेरा स्वामी के चरण चाहिए, वो माया अपना हट जाएगा। भगवान इसलिए बोलते हैं कि माया में ताम तरन, जो मेरा शरणागत हो जाते हैं उनको मेरे से माया कोई कुछ नहीं कर सकती, परे हो जाएगा। मामे जो मेरे शरण ग्रहण करते हैं वे मेरी माया को प्राप्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा ही था इसमें, पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, कोई विचार है तो बोल सकते हैं। कृषि जम मास्टर बोलती
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर द एनलाइटनमेंट, स्पेशली अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस, हाउ भागवतम इज स्पीकिंग अबाउट ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग महाराज, यू सेड दैट व्हेन समवन टेल्स इवन कृष्ण कथा, इट इज टिंक्ड विद द थॉट प्रोसेस, विचारधारा उसमें डाल के आता है। सो जैसे हम लोग भी प्रचार करने के लिए जाते हैं वॉइस में, नहीं तो इधर उधर, तो हम, मैं भी शुद्ध नहीं हूँ, तो मेरा विचारधारा भी उसमें जाने का श्योरली गारंटी है, तो हम कैसे उससे केयरफुल रहे कि मैं भागवत की विचारधारा में मेरा खुद का कंटेमिनेशन नहीं डाल रहा हूँ, और वो कैसे केयरफुल रहे और उसको रिसीव करने के लिए भी कैसे केयरफुल रहे दूसरे से।
देखो, भागवत में जो भी भगवान का विशेष कथा होता है उस कथा के अनुसार ही चलना चाहिए। मेरे विचारधारा उनके किसी को बड़ा पब्लिक सम्मोहित करने के लिए या उसमें प्रभाव करने के लिए अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। हमारा विचार होना चाहिए कि भगवान का वाणी को समझाएंगे, वो स्वीकार करे ना करे। उसको स्वीकार करने हेतु यदि हम उनको बोले, जैसे कई दफा मैं सुना हूं, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, आप सब रोगों से मुक्त हो जाएगा। विष्णु सहस्र नाम में लिखा अंत में पहले स्मृति बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। विष्णु सहस्र नाम का पठन कोई साधारण नहीं है। पहले स्मृति में लिखा है जो इस विष्णु सहस्र नाम जो रोजाना पढ़ते रहेगा उससे समस्त व्याधि से मुक्त हो जाएगा। क्या भगवान का नाम व्याधि से मुक्त होने के लिए है? जो असली व्याधि से मुक्ति छोड़कर भौतिक वाद, तो इस प्रकार का लालच नहीं देना चाहिए। मेरा विचार बोलते हैं कहीं करो भगवान का नाम जप कर, भगवान का नाम इसलिए जप कर करते हैं, भगवान का नाम जप करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान का नाम जप करते करते मन शुद्ध हो जाएगा, जब मन शुद्ध हो जाएगा सभी कष्ट जो भौतिक कष्ट अपना दूर हो जाएगा। ये फल है, लेकिन हम ये जप करने से तुम्हारा दुख ठीक है, वो जप करेगा उस दुख से दूर हो जाएगा, फिर आपको जय जय कर लो बाय बाय। तो उस उद्देश्य हमारा भगवान का नाम इसलिए जप करते हैं कि मैं रोग से मुक्त होना, वो ऐसा लालच में नहीं करना जो स्वयं प्राय कथाकार करते हैं। अब जो भी कथाकार कर रहे सुनो, हाँ भाई आपका घर में ये काम है, अब ये कथा करो, भगवान का अभिषेक कराओ, अच्छी बात है, भगवान का अभिषेक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कष्ट से दूर होने के लिए अभिषेक कराए बताओ, फिर तो ये तो बनिया के जैसे काम हो गया। भगवान का भक्ति हम इसलिए करते हैं, भगवान हमारे को कष्ट दे सुख दे, कष्ट और सुख किस लिए? शरीर के लिए है, सुख है कष्ट है शरीर के लिए है, आत्मा के लिए ना कष्ट है ना सुख है। और भगवान का भक्ति करते शरीर भाव से मुक्त होना है, जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे फिर तो कष्ट सुख रहेगा। हमारा आचार्य लोग जितने भी देखे उनको, वो शरीर भाव से मुक्त हुआ ना, तो सर्दी है ना गर्मी है कुछ भी उनको लगता नहीं, हमें तो स्थाई में नहीं गया, लेकिन भाव तो उद्देश्य तो वही होना चाहिए हमें ना। कई दफा आकर्षण के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन उसी को वही उद्देश्य बोल काम नहीं चलना। कई दफा बोलते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं, मिलता नहीं है कोई, मैं सुना हूं इसलिए बता रहा हूं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र जप करो भगवान आपको नौकरी, अगर उसको नौकरी नहीं मिला 3 महीने 4 महीने जप किया नौकरी नहीं मिला फिर आपके पास ही आएगा। आप और मैं आप हम लोग आपस में लालच होते हैं, कृष्ण थोड़ी लालच हो जाएगा। तो ऐसा कर और जो कर्मकांडी ऐसा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भागवत के ऊपर प्रकाश डाल के हमें अनुग्रहित किया। तो मेरा सवाल है कि आपने बोला कि हमें ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखना चाहिए, तो
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई सच, आप 10 ज्योतिष शास्त्र और 10 अलग अलग कुंडली बनाएंगे। हाँ,
तो हमें ज्योतिष शास्त्र तो श्रुति में आता है महाराज, तो हमें ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखना चाहिए या ज्योतिष के कर्म कांड में विश्वास नहीं रखना चाहिए?
ज्योतिष जो पहले है कि ज्योतिष शास्त्र दिव्य है, आयुर्वेद पैसा कमाने के लिए नहीं होता, ये दिव्य है, वेदों का भाग है। यदि उसको जो पैसा कमाने के चक्कर में कर रहे हैं ज्योतिष, आप कुंडली बना रहे हैं, सावधान रहो उससे। अभी तक गांव में कहीं मिलेंगे ब्राह्मण पुरोहित मिलेंगे कभी अच्छे शुद्ध, ऐसे नहीं, भारत महान है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन अच्छा है कम हो, उनको पूछते नहीं है, ऐसा भी मनाने वाले जो उसको कोई लालच नहीं है, केवल आपको हित करने के लिए बनाते हैं, ठीक रहेगा। लेकिन जो आप आने वाला है तो सोचकर क्या करोगे? फर्ज करो मेरे को 3 साल के बाद हार्ट अटैक आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल। अभी 3 साल के बाद जो आ रहा, अभी आज से चिंता रहेगा ना, अभी हेल्थ ठीक है, सोचते सोचते सचमुच हार्ट अटैक आएगा। अब भाई जीवन में जो आना है आएगा, जो जाना है जाएगा, उसको लेकर क्या करना। मैं बोलता हूं कि अभी जो जीवन में आना है ना, आप रोक सकते हो, जो जाना आप रोक नहीं सकते हो, दोनों में हमारा क्षमता नहीं है, तो उसके लिए, और दोनों हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए चिंता क्या करोगे? और चिंता से मुक्त वो कर सकते हैं, राधा वृंदावन चंद्र कर सकते हैं, इसलिए उनका चिंता हरण को ले लो, उनका उनका शरणागत होने से वो चाहे तो करे। बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है माता पिता जानते हैं। अगर छोटा आपका बच्चे बीमार है, सर्दी का मौसम है, आइसक्रीम चाहता है, आप दोगे? लेकिन आपका बगल में गया, बोल चाचा जी अंकुल जी मेरे को आइसक्रीम चाहिए, अंकुल बोलते पिघल गए ये, अब 5-10 रुपये दे देगा, आइसक्रीम खरीदेगा। अभी रात में तो बुखार आ गया, ठंडी लग गया, अंकुल तो खराटा लगा कर सो रहा है, लेकिन आप तो रात भर जाग रहे हो। अब बच्चे सोचते अंकुल अच्छा है लेकिन पिताजी ठीक नहीं है, सच में कौन अच्छा है? इस प्रकार जो हमारे लिए क्या अच्छा क्या ब्राह्मण जानते नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं। इसलिए जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ आ रहा है भगवान की इच्छा से आ रहा है, स्वीकार करें, नहीं आ रहा जो इच्छा से बदलना भी है, चाहे तो हम हाथ उठाते हैं तो भगवान देख रहे भाई इसका तो रेखा बदलते हैं, चलो भगवान चाहे सब रेखाएं बदल सकते हैं। तो शास्त्र है, गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए सोच विचार क्या करना।
यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि ऐसा प्रचलन है हमारे समाज में कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक हमें जो ज्योतिष के तहत जो मिलता है, जैसे अगर किसी का विवाह होने वाला है तो मंगल का जो दोष हटाने के लिए जो कर्म कांड होता है वो कर लेना चाहिए, ऐसे लोग कुछ लोग बोलते हैं, उस पे आपकी क्या टिप्पणी?
क्या गारंटी है कि वो कर्म कर दिया, प्राय कर दिया, आप दोष से मुक्त हो गया? क्या शनि देवता इतना मूर्ख है क्या? एक दिन जाकर तेल डाल दिया वो आपको मुक्ति कर देगा? अरे शनि देवता शुद्ध भक्त है, भगवान का ऐसा भक्त है कि कभी दूसरों को देखते नहीं, हमेशा भगवान का स्मरण करते नहीं, आंख नीचे रखते हैं। मेरे प्रारब्ध वश मेरे को 7 साल 8 साल 10 साल को शनि है, मैं आज शनि मंदिर में जाकर तेल डाल दिया, एक घंटा शनिदेव शनिदेव गायत कर लिया, जाओ बोलेंगे क्या? आपसे भी भौतिक ढंग से भी देखो, आपको तो कभी आपके शक्ल देखने के लिए भी नहीं आता था, तुरंत आप आकर जाकर बात करने लगा, बड़ा स्तुति करने लगा, आप उसको जो बोलेगे करोगे क्या? फिर शनिदेवता कैसे करेगा? ये हो सकता है, अर्थ है कि शास्त्र में इसका उपचार दिया है, लेकिन एक ही वो करने मात्र नहीं, उसके तो एक तपस्या है वो भी, तो इसलिए ये सब सभी भक्त भगवान का भक्त है। शनि देव जितने भी नवग्रह भगवान का भक्त है, जब हम भक्ति करने लगे तो वो हमारी सहायता करेंगे, उस विश्वास से चलने पर ठीक है।
कई ज्योतिष ये भी बोलते हैं कि कुछ ज्योतिष दोषों का उपाय बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए, तो वहां पे क्योंकि मैं भी श्री राम का भक्त रहा हूँ बचपन से, तो मैं हनुमान चालीसा और रामचरितमानस तो बचपन से पढ़ता था, लेकिन कभी ये इस मनोभाव से नहीं पढ़ा कि मुझे कर्म कांड करना है इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो वहां पे उस कैसी भावना होनी चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने की, अगर किसी ज्योतिष ने बोल भी दिया तो?
हनुमान किन का भक्त है?
श्री राम की,
शुद्ध भक्त है
जी।
हनुमान जो भी कार्य किया है कभी अपने लिए कुछ मांगा? अब उनको उदाहरण लेकर देखो, जब भगवान जो वो भक्ति कर रहे, कुछ अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है, उनका एक उद्देश्य ये न कि उपाय से सीता राम को प्रसन्न करे, बस उतना ही है। हम हनुमान चालीस में हनुमान चरित्र पढ़कर हम सीखें जिस प्रकार हनुमान जो है शुद्ध भक्ति किया है, हम भी उससे करें। हम भगवान हनुमान जी से बोले हम कृपा करके हमारे को ऐसा शुद्ध भक्ति करने के लिए सहायता करो, ये नहीं कि हम आपका कर रहे मेरे एग्जामिनेशन में पास करो, नहीं। ये तो लालच हो जाता है, करते हैं सभी का एग्जामिनेशन टाइम में सब हनुमान मंदिर फुल होता है इंडिया में। तो हमारे क्या है कि ये भौतिक जो भी आता जाता है इसका कोई पीछा पड़ने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पड़े जो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है वो भगवान का कृपा, उसके लिए पीछे पड़े। जब भगवान का कृपा होता है समस्त नवग्रह अपने आप ही अलाइन करते रहेंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में समस्त ग्रह क्या है अलाइन कर लिए कि नहीं, उसमें लिखे भागवत में आ जाता है काल परम शोभना। काल कोई परम शोभित होता है क्या? काल तो भयानक है। नहीं, भगवान आ रहा से काल समय जो अपने आप जितने ग्रह बोला भाई भगवान अवतरण हो रहा सभी हम अलाइन कर लेते, शुभ मंगल मंगल भावना मंगलहारी। तो भगवान के भक्त हम लोग शरणागत होंगे पूर्णतः, सभी मंगल मंगल है, अमंगल कुछ नहीं, अमंगल भी मंगल हो जाएगा। तिरुपति में जाओ बालाजी में शादी करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, 365 दिन 24 घंटा आप जब टाइम है जाकर उधर करो। हाँ, उधर कोई मंगल का तो लिखा है मंगल भावना में, क्योंकि भगवान का सन्निधि समस्त ग्रह सिद्ध करो, अमंगल कैसा होगा? उधर मंगल मांगलिक अगर कोई न सब मंगलिक हो जाए। तो कहने करते जो भी भगवान का संबंध में करते हैं भगवान के शरणागत भाव से करते हैं, कपटी नहीं पूर्णतः शरणागत होना चाहिए, तब है ना भगवान मंगल ही होगा। मंगल अमंगल जो कुछ होता है शरीर के लिए है, भगवान का भक्ति आत्मा से हो रहा, और धीरे धीरे हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि शरीर भाव से मुक्त होना ही हो। एक दिन तो नहीं होगा कोई भी, हरि कृपा गुरु कृपा भक्तों कृपा होता है, एक दिन संभव है। समाप्त करें, काफी टाइम हो गया। हाँ प्रभु,
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
हरे कृष्ण।
तो प्रभुपाद इसी श्लोका के परिपाठ में लिखते हैं, पास्ट हैप्पीनेस एंड प्रेजेंट हैप्पीनेस आर मेरली ड्रीम्स, द एक्चुअल रियलिटी इज कृष्णा एंड सर्विस टू कृष्णा विच कैन सेव अस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। तो हम बहुत कृतज्ञ है कि प्रभुपाद के मिशन में जुड़े और सेवा करने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी सेवा जब करते हैं तो हम अपने कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेवा चूज करते हैं, तो वो सही है या गलत है? और उसके अलावा क्या मूड होना चाहिए सेवा करने का जिससे हम प्रॉपर ने जो परपट दे उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को जी सके?
जब मंदिर का अध्यक्ष और उनका द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई भी भक्त है पहले हम समर्पण होना चाहिए। समर्पण होकर मैं इसलिए मैं अपना इच्छा अपना आराम के साथ भगवान का सेवा कर नहीं है। प्रॉपर जी बोलते हैं ना कि जो उनका आदेश है वो हमारे लिए कष्टदायक भी है, सेवा करना है। जब पहले हमने ये भक्ति का अधिकार स्वीकार किया, अध्यक्ष का गुरु महाराज के भी स्वीकार किया शरणागत का, अब पहले इधर हम नहीं मानते गुरु को कैसा मानेंगे? तो ये क्रमेण धीरे धीरे एक एक लेवल से चलता है। तो जब जो भी आदेश हमें मिलता है भक्ति में सेवा में हमारा सुविधा के अनुसार नहीं है, क्योंकि जो भी प्रभु हमारे को आदेश दे रहे हैं काम करने के लिए मंदिर के लिए कर रहे हैं, भगवान के सेवा में कर रहे हैं, तो आपके सुविधा के लिए नहीं। तो इसमें देखना है कि भाई ठीक है हमको रोजाना सुबह 3 दिन मंगल आरती में कष्ट है, लेकिन इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए असुविधा होते हुए भी मैं आऊंगा। अपना कष्ट भगवान के सेवा में अपना सुविधा देखना नहीं चाहिए। जब अपना सुविधा देखते रहेंगे फिर तो भक्ति का में बाधा आएगा। फिर तो देखिए बहुत सारे इधर तो भारत में अलग है, बाहर के देश में जब दीक्षा लेने तक तो प्रेसिडेंट के पीछे घूमते रहते हैं, प्रभु जी मैं ये सेवा करूं। अब जैसे दीक्षा हो गया राम नाम सत्य गया फिर जन्माष्टमी में देख सकते हैं उनको, बस वो भी मुश्किल से है। रोज पूछते हैं प्रभु वही यू आर नॉट कमिंग, टू बिजी, उससे पहले बिजी नहीं था। कई बोलेंगे मॉर्निंग वेरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम प्रभु, यू डोंट नो यू आर इन द टेम्पल, सुबह आने से कोई चोर पकड़ेगा। अरे भाई तुम सिक्योरिटी अलार्म लगाओ, वो लगाओ, सब कुछ लगा दे, फिर भी चोर तो आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी अलार्म के ऊपर इतना विश्वास है, कृष्ण का कृपा के ऊपर विश्वास नहीं ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान का प्रसन्न करना चाहें तो पहले हमारे ऊपर जो भी अधिकार है, हम शिक्षा सिखा रहे हैं उसका अधिकार को स्वीकार करना, उसका साथ समर्पण कर उनसे सीखे, फिर उनके साथ एक एक कर, केवल मंदिर का अध्यक्ष का आज्ञा सुनूंगा बाकी कहना, ऐसा तो नहीं चल सकता। जितना हम किसी का अधीनता स्वीकार करके काम करेंगे, इतने हमारा दीन भाव बढ़ेगा, समर्पण भाव होगा। जितना हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उतना ही अहंकार बढ़ते जाएगा। और भगवान का अहंकार जब आ गया, भगवान बोले तो दूर ही रहो, बोले अहंकार पसंद नहीं होता। ठीक है प्रभु, श्रीमद भगवत पुराण की जय, जय श्रील प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय।